नमस्कार। आज हम एक गहरा विश्लेषण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक महत्वपूर्ण उद्बोधन का। उद्बोधन का नाम है शिक्षा व्यवस्था कैसी हो।
जी, और गुरुदेव शिक्षा को मनुष्य की दूसरी आंख कहते थे, मतलब एक ऐसी दृष्टि जो सिर्फ आसपास की चीजें ही नहीं देखती बल्कि वो ज्ञान भी देख पाती है जो छुपा हुआ है। इतिहास से सबक लेना, भविष्य की संभावनाएं देखना, ये सब।
बिल्कुल। तो आइए आज उन्हीं के विचारों से समझने की कोशिश करते हैं कि एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था जो व्यक्ति का भी निर्माण करे और राष्ट्र का भी।
हाँ, और देखिए, गुरुदेव ने शुरुआत ही भारत में निरक्षरता की जो स्थिति थी उस पर चिंता जताते हुए की थी। वो इसे व्यक्ति के बौद्धिक विकास और समग्र विकास में एक बहुत बड़ी बाधा मानते थे। सोचिए ना, जहां इतनी बड़ी आबादी पढ़ी लिखी ना हो, उन्हें जागरूक कैसे किया जाए, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या पारिवारिक, राष्ट्रीय, नैतिक, आध्यात्मिक मुद्दे हो।
सही बात है। और उनका एक अहम बिंदु ये भी था, मुझे याद है, कि सिर्फ सरकारी कोशिशें काफी नहीं होंगे, खासकर भारत जैसे विशाल देश में जहां आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है।
सरकारी योजनाएं बनते बनते आबादी और बढ़ जाती है, सब तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए गुरुदेव ने लोक सेवियों और आम जनता से आगे आने का आह्वान किया था। कहा था कि सबको मिलकर प्रयास करना होगा, खास तौर पर वयस्क शिक्षा के लिए। उनका तर्क बड़ा सीधा और व्यवहारिक था कि जो वयस्क आज अशिक्षित हैं, उन्हें अगर हम आज पढ़ा दें तो राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान फौरन मिलना शुरू हो जाएगा।
बच्चों को पढ़ाएंगे वो तो 20 साल बाद योगदान देंगे।
हाँ, ये बात तो बहुत पत्ते की कही। और इसके लिए उन्होंने बड़े ठोस सुझाव भी दिए थे, है ना, जैसे वो रात्रि पाठशालाएं।
जी हाँ, पुरुषों के लिए, खासकर किसान और मजदूर वर्ग के लिए, शाम को 7 से 9 बजे रात्रि पाठशालाएं, जब वो दिन भर के काम से फुर्सत पालें। और स्त्रियों के लिए, उनके लिए दोपहर में शायद 2 से 5 बजे का समय सुझाया था, जब उन्हें घर के कामों से थोड़ी फुर्सत मिलती है, उनके खाली समय का सदुपयोग।
अच्छा, और इसका मकसद सिर्फ कहा घा सिखाना नहीं था?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य था कम से कम प्राइमरी स्तर यानी 5वीं कक्षा तक की शिक्षा देना, जिससे वो सामान्य पुस्तकें, अखबार पढ़ सकें, थोड़ी दुनियादारी समझ सकें, हिसाब किताब रख सकें। और इसके लिए उन्होंने पढ़े लिखे लोगों से अपील की थी कि इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी समझें, एक तरह का श्रम दान करें, रोज 1-2 घंटा निकालकर पढ़ाने का काम करें।
ये तो हुई साक्षरता की बात, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन गुरुदेव शिक्षा के उद्देश्य को लेकर भी बहुत स्पष्ट थे ना, मतलब आज की जो नौकरी केंद्रित पढ़ाई है उसके बारे में उनके क्या विचार थे?
हाँ, वो इस नौकरी केंद्रित शिक्षा के यूं कहें कि सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि शिक्षा का असली लक्ष्य स्वावलंबन होना चाहिए, आत्मनिर्भरता। शिक्षा ऐसी हो जो लोगों को उनके जो पुश्तैनी काम है, जैसे खेती है या दुकानदारी है या कोई और हुनर है, उसमें और ज्यादा कुशल बनाए।
मतलब किसान का बेटा अच्छी खेती सीखे, व्यापारी का बच्चा व्यापार के गुर सीखे।
बिल्कुल। उनका मानना था कि प्राइमरी शिक्षा सबके लिए जरूरी है, लेकिन उसके बाद बच्चे की रुचि और पारिवारिक आवश्यकता के हिसाब से व्यावसायिक तालीम की दिशा तय होनी चाहिए।
अच्छा, तो फिर सरकारी नौकरियों का क्या, उसकी तैयारी कैसे हो?
देखिए, उस पर गुरुदेव की सोच बड़ी साफ थी। वो कहते थे कि पहले ये देखो कि जरूरत कितने लोगों की है। मान लीजिए 1000 इंजीनियर चाहिए, तो आप लगभग उतने ही लोगों को उसकी ट्रेनिंग दो। 10,000 को ट्रेनिंग देकर फिर 9,000 को बेरोजगार बनाने का क्या फायदा? इससे देश का समय, पैसा, संसाधन सब बचता है। जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण दो।
ये तो बड़ा व्यवहारिक नजरिया है। अच्छा, नौकरी और पेशे से हटकर उन्होंने कुटीर उद्योगों पर भी बहुत जोर दिया था, शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए।
जी हाँ, बिल्कुल। वो मानते थे कि भारत जैसे विशाल और फैले हुए देश के लिए, जहाँ हर गांव तक बड़े कारखाने पहुँचाना मुमकिन नहीं है, कुटीर उद्योग सबसे बेहतरीन मॉडल है। उन्होंने जापान का उदाहरण भी दिया था कि कैसे वहाँ स्कूली बच्चे तक और घर की स्त्रियाँ भी अपने खाली समय में घर पर ही छोटे मोटे उद्योगों का काम करते हैं।
हाँ, इससे हर रात को काम मिलता है।
सही कहा, घर की आमदनी बढ़ती है और राष्ट्रीय उत्पादन में भी योगदान होता है।
और उन्होंने शायद ये भी कहा था कि उत्पादन और बिक्री को अलग अलग रखना चाहिए।
जी, ताकि जो बना रहा है उसे बेचने की चिंता न करनी पड़े। उत्पादन घर पर हो और फिर सहकारी समितियां या कोई और संस्था उसे इकट्ठा करके बेचने का काम देखे, इससे व्यवस्था आसान हो जाती है।
अब आते हैं पाठ्यक्रम पर, यानी सिलेबस। उसको लेकर भी उनके विचार काफी अलग थे।
हाँ, बहुत क्रांतिकारी थे। वो रटंत विद्या के तो एकदम खिलाफ थे। कहते थे कि पाठ्यक्रम जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए, स्वास्थ्य कैसे ठीक रखें, परिवार कैसे चलाएं, सामाजिक समस्याएं क्या हैं, राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, आध्यात्मिक जीवन क्या है, ये सब सिखाओ।
हाँ, मतलब वो लंबे चौड़े राजाओं के नाम रटना या हर किसी को मुश्किल ज्यामिति पढ़ाना।
जी, वो कहते थे इसकी क्या जरूरत है, सबको इतिहास पढ़ाओ लेकिन विश्लेषण के साथ, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या गलतियां हुई जिनसे हम सीख सके ताकि भविष्य सुधरे। सिर्फ नाम और तारीखें रटाने से क्या होगा।
और यहीं पर वो शिक्षा और विद्या का बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं ना।
हाँ, ये गुरुदेव के पूरे चिंतन का सार है आप कह सकते हैं। शिक्षा मतलब वो जानकारी, वो स्किल्स जो हमें दुनियादारी चलाने, रोजगार पाने के लिए जरूरी है, भौतिक ज्ञान। और विद्या क्या है? विद्या है कर्तव्य का ज्ञान, अच्छे गुण, चरित्र का निर्माण, नैतिक और आध्यात्मिक समझ।
अच्छा,
उनका बहुत आग्रह था कि शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक उसमें विद्या का समावेश ना हो। आप इसे नैतिक शिक्षा कह लीजिए, सांस्कृतिक कहिए, आध्यात्मिक कहिए, पर ये तत्व जरूरी है। यही इंसान को सिर्फ कमाना नहीं, सही ढंग से जीना सिखाता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है।
और शायद इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गुरुकुल परंपरा को फिर से जीवित करने की बात कही थी।
बिल्कुल सही। उनका मानना था कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, खासकर उनके नैतिक और चारित्रिक निर्माण के लिए, कई बार घर का माहौल पर्याप्त नहीं होता या सही दिशा नहीं दे पाता, तो एक अनुशासित संस्कारित वातावरण की जरूरत होती है, जैसा प्राचीन गुरुकुलों में मिलता था, योग्य शिक्षकों का मार्गदर्शन।
तो उन्होंने सुझाव दिया था कि माता पिता जो पैसा बच्चों पर घर में खर्च करते हैं वो गुरुकुलों को दें।
हाँ, कि वो संसाधन गुरुकुलों को मिले जहाँ एक अच्छा माहौल हो, अच्छे शिक्षक हो और बच्चों का चरित्र निर्माण सही ढंग से हो सके।
तो अगर हम सार देखें, पूज्य गुरुदेव की नजर में शिक्षा सिर्फ डिग्री या नौकरी पाने का जरिया नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
ये तो व्यक्ति के संपूर्ण विकास का आधार है।
ज्ञान भी हो, चरित्र भी बने, वो आत्मनिर्भर भी हो और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझे। शिक्षा और विद्या का संतुलन।
एकदम सही कहा आपने, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों के निर्माण का सबसे मजबूत औजार है।
गुरुदेव का आवाहन यही था कि आने वाली पीढ़ी का निर्माण एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और इसके लिए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, भले ही इसके लिए कितने भी साधन जुटाने पड़े या शायद दूसरे खर्चों में कटौती ही क्यों न करनी पड़े।
जी, और ये बात आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सिर्फ जानकारी या डिग्री देने वाली शिक्षा पर जोर दे रहे हैं या वाकई जीवन गढ़ने वाली सच्ची विद्या के लिए कितना निवेश करने को, कितना त्याग करने को तैयार हैं।
ये एक विचारणीय प्रश्न है।
चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।